ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद तीसरा अध्याय चौथा श्लोक क्रमांक 14 एवं 15। इति आदृत उक्त परमस्य पुंसः प्रतिक्षण अनुग्रहभाजनः अहम् स्नेहा उत्थरोमा स्खलित अक्षरः तं मुञ्चन् शुचः प्राञ्जली अवभाषे। इत्यादृतोक्त परमस्य पुंसः प्रतिक्षणानुग्रहभाजनोऽहम् स्नेहोत्थरोमा स्खलिताक्षरस्तम् मुञ्चन् शुचः प्राञ्जलिराभभाषे। इत्यादृतोक्त परमस्य पुंसः प्रतीक्षणानुग्रहभाजनोऽहम् स्नेहोत्थरोमा स्खलिताक्षरस्तम् मुञ्चन् शुचः प्राञ्जलिराभभाषे। इति इस प्रकार आदृत अनुग्रह होने पर उक्तः संबोधित किया परमस्य परम के पुंसः श्री भगवान प्रतिक्षण प्रत्येक क्षण अनुग्रह भाजन कृपा पात्र अहम् मैं स्नेह प्रेम उत्थ रोमा शरीर में रोमांच स्खलित शिथिल हो गई अक्षरह नेत्रों को तम वह मुंचन पहुंचकर शुचह आंसू प्रांजलि हाथों को जोड़े हुए अवभाषे कहा। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। उद्धव ने कहा, हे विदुर जी, जब मैं उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रतिक्षण इस प्रकार कृपा पात्र बना हुआ था और उनके द्वारा प्रगाढ़ प्रेम से संबोधित किया जा रहा था, तो मेरी वाणी हर्ष के कारण गदगद हो गई और मुझे रोमांच हो गया। तब मैंने अपने आंसू पोंछकर हाथ जोड़कर भगवान से इस प्रकार कहा, मेरे प्रभु, जो भक्त आपके चरणारविंदों की अप्राकृत प्रेममयी सेवा में निरत हैं, उनको धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों के क्षेत्र में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। किंतु हे भूमन, जहां तक मेरा संबंध है, मैंने केवल आपके चरणारविंदों की प्रेममयी सेवा में निरंतर संलग्न रहना ही श्रेयस्कर माना है। तात्पर्य, वैकुंठ लोकों में जो लोग भगवान का संग प्राप्त कर लेते हैं, उनके शरीर की आकृति भगवान श्री विष्णु की आकृति जैसी प्रतीत होने लगती है। इस प्रकार की मुक्ति सारूप्य मुक्ति कहलाती है, जो पांच प्रकार की मुक्तियों में से एक है। जो भक्त भगवान की अप्राकृत प्रेममयी सेवा में संलग्न हैं, वे सायुज्य मुक्ति अर्थात ब्रह्म ज्योति नामक भगवान के शरीर की किरणों में लीन होना कभी स्वीकार नहीं करते। भक्तगण केवल मुक्ति ही नहीं प्राप्त कर सकते, अपितु वे धर्म अर्थ और काम के क्षेत्र में स्वर्ग लोकों के स्तर की कोई भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उद्धव जैसे शुद्ध भक्त केवल भगवान की सेवा में तल्लीन रहना चाहते हैं, उनको अपने वैयक्तिक लाभ की कोई चिंता नहीं होती। ओम अज्ञानते इस चौथे अध्याय का शीर्षक है श्री विदुर मैत्रेय मिलन, जहां ये दो श्लोक उद्धव जी वो अपने श्रीमुख से कह रहे हैं। जब ऐसे महान भक्त एकत्रित होते हैं, महात्मा विदुर, मैत्रेय ऋषि, महात्मा उद्धव, तो हम क्या आशा रख सकते हैं कि आपस में क्या वार्तालाप इनमें हो रहा होगा। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि सुबह जब हम पक्षियों को एक साथ आता देखते हैं तो हम क्या समझते हैं कि पक्षियां, ये चिड़ियां, ये सब एक साथ आते हैं। तो एक साथ आते हैं तो उनकी जो चहचहाहट है उसमें क्या वार्तालाप चल रहा होगा। सुबह सुबह हम देखते हैं चिड़ियां एक साथ आती हैं और कितनी आवाज होती है। तो मानो कोई सभा चल रही हो उनकी, तो चिड़ियों की उस सभा में चिड़ियों का क्या वार्तालाप हो रहा होगा। आज दाना कहां मिलेगा, आहार निद्रा भय मैथुन, कहां सोने मिलेगा, कहां मैथुन सुख है, कैसे हम एक दूसरे की रक्षा करें। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त जब एक साथ आते हैं, मत चित्त मत गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च, परस्पर मेरे भक्तों में आदान प्रदान होता है मेरी कथा का, मेरे कीर्तन का। तो यहां पर उद्धव जी, महात्मा विदुर, मैत्रेय, ये हमें हमारी साधना भक्ति में ये शिक्षा दे रहे हैं कि हम जो इन महान भक्तों के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, हम जब एकत्रित आते हैं तो हमारा वार्तालाप क्या होना चाहिए। भक्तों में आदान प्रदान किस प्रकार का होना चाहिए। तो कोई कह सकता है, भाई मैं तो भक्त नहीं हूं, मैं अपने आप को भक्त कैसे कह सकता हूं, मैं अपने आप को वैष्णव कैसे कह सकता हूं। हम वैष्णव और भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए ये हमारे ऊपर एक उत्तरदायित्व है, क्योंकि जब हमें ये उपाधि दी जाएगी वैष्णव की, तो इसमें ख्याति विष्णु है, मुख्य विष्णु इनका नाम है, इसलिए जब कोई किसी का प्रतिनिधित्व करता है तो उसके ऊपर एक उत्तरदायित्व आ जाता है अपने स्वामी का, जिसका वो प्रतिनिधित्व कर रहा। कोई पुलिस में है या कोई सेना में है तो पुलिस का और उस सेना का प्रतिनिधित्व करता है जो वर्दी वो पहनता है, और उसके कारण के वजह से हां उसे सल्यूट मिलता है, लेकिन वो जानता है कि जो सल्यूट है ये इस वर्दी के वजह से है, और ये वर्दी मुझे किसी दर्जी ने नहीं दी, ये वर्दी मुझे, मैं जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, उन्होंने दी। तो जब भक्त एकत्रित आते हैं तो भगवत चर्चा ये एक उत्तरदायित्व है उनका, ये कोई ऑप्शन नहीं है। हम भक्तों का ये उत्तरदायित्व है, कथयंतश्च, भगवान की कथा श्रवण और कीर्तन ये करना। और हम कृष्ण भावनामृत संघ में हैं तो कृष्ण भावना, इसका अर्थ है भगवान से संबंध स्थापित करना, और जब हम किसी से भी संबंध स्थापित करते हैं, भगवान तो छोड़ दीजिए, किसी भी व्यक्ति से हम जब संबंध स्थापित करते हैं या किसी भी वस्तु से संबंध स्थापित करते हैं, संबंध किसी से भी स्थापित किया जा सकता है, किसी वस्तु से भी, किसी व्यक्ति से भी, किसी स्थिति से भी। जैसे कि कोई व्यक्ति कोई नई गाड़ी खरीदता है तो उसने संबंध स्थापित किया है, अपना संबंध अब उस गाड़ी से उसने प्रस्थापित किया, तो गाड़ी पर अपना नाम लिख लेता है, या जिससे वो प्रेम करता है अपने पुत्र का नाम या जिस किसी का भी नाम लिख लेता है, या किसी देवी देवता से जो प्रेम करता है उनका नाम लिख लेता है, जय माता दी लिख देता है, और फिर वो जो गाड़ी है उसके कागजात जो है उस पर उसका नाम लिखा जाता है कि इसके नाम पर अब ये गाड़ी है। पाश्चात्य देश में तो जब कोई व्यक्ति गाड़ी खरीदता है तो वही गाड़ी वो चला सकता, और कोई गाड़ी नहीं चला सकता, वो गाड़ी का उसके साथ विवाह हो जाता है फिर। तो अब उसने एक वस्तु खरीदी है, उसके साथ उसका संबंध देखिए कितना गहरा प्रस्थापित होता है। तो अब उस संबंध में उसकी अपेक्षा क्या है कि अब ये गाड़ी मेरे साथ आदान प्रदान करेगी, मैं जब चाबी घुमाऊंगा तो गाड़ी चालू होगी, मैं जब एक्सीलेटर दबाऊंगा तो आगे चलेगी। So he is expecting reciprocation. तो संबंध के पश्चात आदान प्रदान, आदान प्रदान की अपेक्षा रहती है। किसी व्यक्ति के साथ संबंध प्रस्थापित होता है तो अवश्य ही आदान प्रदान की अपेक्षा रहती है, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, पति हो। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण से संबंध प्रस्थापित कर रहे हैं कृष्ण भावना में, तो क्या ये अपेक्षा हमारी होनी चाहिए भगवान से आदान प्रदान होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? किसी भी संबंध को बनाए रखने के लिए उसमें अक्सर देखिए लोग ये जो रेसिप्रोकेशन आदान प्रदान है इसे एकदम तरोताजा बनाए रखते हैं। टू कीप दैट रिलेशनशिप फ्रेश द रेसिप्रोकेशन हैज टू बी फ्रेश। तो अब एक वस्तु के साथ संबंध कोई स्थापित करता है और किसी व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करता है, दोनों में अंतर क्या है? और वस्तु के साथ भी आदान प्रदान हो रहा है, व्यक्ति के साथ भी आदान प्रदान हो रहा है। मान लीजिए कि उस गाड़ी में उस व्यक्ति का कोई निजी कोई रिश्तेदार या पति चला रहा है, पत्नी बैठी है गाड़ी में, तो वो जो वो पति है वो गाड़ी के साथ आदान प्रदान कर रहा है और बातचीत कर रहा है किससे? पत्नी से। मान लीजिए उल्टा हो जाए कि गाड़ी के साथ बातचीत करने लग जाए और जो बगल में बैठा है यहां वहां गेयर हिलाने के लिए उनके बाल खींचने लग जाए, तो जो जड़ वस्तु है जड़ वस्तु के साथ भौतिक स्तर पर या उस जड़ स्तर पर आदान प्रदान होता है, परंतु किसी व्यक्ति के साथ यह अपेक्षा होती है कि उस व्यक्ति के साथ आदान प्रदान सूक्ष्म स्तर पर होता है, भावनाओं के स्तर पर, एट द लेवल ऑफ इमोशंस। तो भावनाओं के स्तर पर वो आदान प्रदान होता है। अब जब हम भगवान श्री कृष्ण से संबंध प्रस्थापित करना चाहते हैं, इसलिए तो हम कौन सी संस्था में हैं? कृष्ण भावनामृत संघ, इस संस्था में। तो इस संस्था में जो हम भगवान श्री कृष्ण के साथ आदान प्रदान करने की अपेक्षा में हैं, तो भावनाओं का आदान प्रदान, जैसे यहां पर उद्धव जी वो कह रहे हैं, बहुत सुंदर उन्होंने अपने हृदय की व्याख्या की है कि जब मैं उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रतिक्षण प्रतिक्षण इस प्रकार कृपा पात्र बना हुआ था और उनके द्वारा प्रगाढ़ प्रेम से संबोधित किया जा रहा था, तो मेरी वाणी हर्ष के कारण गदगद हो गई और मुझे रोमांच हो गया। तब मैंने अपने आंसू पोंछकर हाथ जोड़कर भगवान से इस प्रकार कहा। देखिए कितना आदान प्रदान यहां पर उद्धव जी के साथ भगवान का हो रहा है। केवल उस समय की व्याख्या उद्धव जी नहीं कर रहे, प्रतिक्षण जो भगवान ने आदान प्रदान उद्धव जी के साथ किया, और कैसा आदान प्रदान? प्रगाढ़ प्रेम, केवल प्रेम नहीं, प्रगाढ़ प्रेम, कंडेंस्ड लव, इंटेंस लव। उस प्रकार का आदान प्रदान उद्धव जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने किया और उसे उद्धव जी याद कर रहे हैं और सुना रहे हैं और उसे याद करते हुए उद्धव जी की आंखों से आंसू आ रहे हैं। इसलिए गौर गोविंद महाराज वो अक्सर कहा करते थे कि जब तक हम कृष्ण भावना में भगवान श्री कृष्ण के प्रगाढ़ प्रेम में आंसू नहीं बहाएंगे तब तक बहुत दूर है दिल्ली या भगवान श्री कृष्ण से संबंध। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि वो हृदय वो वज्र के समान है, कठोर हृदय है जो कि वो द्रवित नहीं होता भगवान के नाम उच्चारण करने से। That heart is steel framed, which doesn't melt. तो अब जब हम उद्धव जी के विषय में और अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले गए ये भी उसी प्रकार का प्रसंग है। तो अर्जुन उन्होंने उनका हृदय जो इतना द्रवित हो चुका था उनकी भावनाएं वो व्यक्त करते हैं। विदुर विदुर को जब ये कहा गया है कि भगवान इस धरती को छोड़कर जब जा रहे थे तो आपको याद कर रहे थे तो वो द्रवित हो गए और वो रोने लगे कि भगवान मुझे याद कर रहे थे। देखिए एक भक्त के विषय में कहा गया है कि उसकी शुद्ध भक्ति की पराकाष्ठा ये है कि अंत समय वो भगवान को याद करे। तो कल्पना कीजिए भगवान जब जा रहे हैं अपने धाम तो कितने सारे भक्तों के साथ उन्होंने संग कर चुके हैं, उन सब भक्तों में से भगवान किन किन को याद कर रहे हैं, कितने विशेष होंगे। और विदुर जी इनके साथ कोई इतने सारे अध्याय नहीं जिसमें भगवान ने विदुर जी के साथ ऐसे आदान प्रदान किया जैसे गोपियों के साथ ब्रजवासियों के साथ, परंतु भगवान उनके भावनाओं के साथ आदान प्रदान कर रहे थे और उनका स्मरण कर रहे थे। तो भगवान का एक नाम है सत्य संकल्प, बहुत ही विशेष, हम साधकों के लिए बहुत विशेष भगवान का एक नाम है जो भगवान के एक विशेष गुण को दर्शाता है। सत्य संकल्प का अर्थ है वो भगवान या वो परम पुरुष जो कि सारी इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। सत्य संकल्प। अब इस भौतिक संसार में हम आए क्यों हैं? इच्छा, इच्छा द्वेष समुत्थेन। हमारी भौतिक इच्छा की वजह से हम इस भौतिक संसार में आए हैं और यहां पर टिके हुए हैं इच्छा की वजह से। और अलग अलग प्रकार की इच्छाएं हैं, अकाम सर्वकामोवा मोक्षकाम उदारदि। कोई है जो इच्छा करकर इतने परेशान हो गए कि अब कोई इच्छा नहीं, वो डर गए, तो जो शून्यवादी हैं वो शून्य बनना चाहते हैं, इच्छा विहीन, इच्छा रहित, डिजायरलेस, वो भी एक इच्छा है। टू बिकम डिजायरलेस इज ऑल्सो डिजायर। अकाम बिना किसी कामना के, सर्व काम कामना से परिप्लुत्व, मोक्ष काम बहुत कम है वो उस कैटेगरी में। तो हम जब भक्ति में आते हैं तो हम हमारे साथ कौन सा बैगेज लेके आते हैं? सर्व काम, सारी कामनाओं का बैगेज लेके आते हैं। और भगवान जानते हैं कि कलयुग के जीव हैं, एक तो भौतिक संसार में और कलयुग में वो भी, तो कलयुग के जीव हैं तो इनका ये जो बैगेज है, ये जैसे कर्ण का कवच कुंडल था ना शरीर के साथ जुड़ा हुआ, तो ये हमारे साथ सब हमारी सारी कामनाएं जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, पैदाइशी वो कवच कुंडल के साथ पैदा हुआ था कर्ण, तो हम भी सर्व कामनाओं के साथ हम पैदा हुए। तो जब हम कृष्ण भक्ति में आते हैं तो भगवान के जो प्रतिनिधि हैं वो हमें ये नहीं कहते कि वो बैग को बाहर रख कर आओ, तुम्हारे कामनाओं के बैग को बाहर रख कर आओ, नो बैगेज अलाउड, वो ऐसा नहीं कहते। हाँ, जो भी जितना भी आपका सामान है, सामान सहित लॉक स्टॉक बैरल बैग बैगेज के साथ आइए। अब श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त 1977 में श्रील प्रभुपाद वृंदावन धाम में जब वो भगवत धाम की यात्रा प्रारंभ कर रहे थे, when he was leaving for the spiritual world, उन्होंने क्या कहा? कुछ इच्छा नहीं, कोई बैगेज नहीं, कुछ इच्छा नहीं उन्होंने कहा। तो हम भी जब भक्ति में आते हैं शुरुआत में तो हमारा भी कुछ इसी प्रकार का एक वाक्य होता है, कुछ इच्छा नहीं, कुछ भक्ति की इच्छा नहीं। कुछ कृष्ण भक्ति की इच्छा नहीं, कुछ जप करने की इच्छा नहीं, कुछ भक्तों के संग करने की इच्छा नहीं। तो ये एक स्टेज है, इच्छा बहुत है परंतु कुछ भक्ति की इच्छा नहीं। और जब प्रभुपाद ने कहा कुछ इच्छा नहीं, इसका अर्थ क्या है? कुछ भौतिक इच्छा नहीं परंतु सर्व कृष्ण कामना। तो हम भक्ति में आने से पहले हमारी धारणा क्या थी? मैं और मेरा और मेरी इच्छाएं। और एक मध्यतर स्तर रहता है जब हम मैं और कृष्ण दोनों, और उच्च स्तर स्तर क्या है जैसे गोपियों का? केवल कृष्ण। लोएस्ट स्टेज इज आई मी माइन, सेकेंड स्टेज आई एंड कृष्णा, हाइएस्ट इज ओनली कृष्णा, कृष्ण इच्छा। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने एक बार अपने एक शिष्य को मालपुआ खाते हुए देखा तो उन्होंने पूछा कैसा लग रहा है मालपुआ? बोले बहुत अच्छा है। तो उन्होंने अपने शिष्य से पूछा, आर यू एंजॉइंग द मालपुआ और द मालपुआ एंजॉइंग यू? तो थोड़ा वो भ्रमित हो गए कि ये कैसे हो सकता है कि मालपुआ मेरा आस्वादन करे। तो उन्होंने कहा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड मींस यू डोंट एंजॉय द मालपुआ एंजॉयज यू। क्योंकि वो भी प्रसाद जो है वो भगवान है, बहुत ऊंचा स्तर है। अगली बार जब हम मालपुआ खाएंगे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ये वाक्य या जो भी कुछ हम खाएं ध्यान में रखना चाहिए। जैसे एक बार हिज होलीनेस राधानाथ महाराज को एक विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा, शायद वो आईआईटी के विद्यार्थी थे क्योंकि ऐसा प्रश्न आईआईटी के विद्यार्थी पूछते हैं। तो उन्होंने पूछा कि महाराज, आध्यात्मिक संसार में तो कोई भी वस्तु नहीं है ना, सभी व्यक्ति हैं, और वहां पर जो भी आप वस्तु या व्यक्ति कहो क्षय नहीं होता उनका। तो जब भगवान श्री कृष्ण एक रसगुल्ला या संदेश खाते हैं तो क्या होता है उसका? तो भगवान महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। महाराज ने कहा कि वो रसगुल्ला जब भगवान अपने जिह्वा पर रखते हैं और उसे जब पूरा आस्वाद करके, उसे चबा के, पूरा रस लेके उसे जब खा लेते हैं, तो वो रसगुल्ला पूरा आस्वादन भगवान को देकर फिर प्रकट हो जाता है। हम खाते हैं तो हम जानते हैं क्या बन जाता है फिर, परंतु आध्यात्मिक संसार में इट इज ऑल फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, सब भगवान की प्रसन्नता के लिए है। तो अब जब हम इस भौतिक संसार में भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम इन स्थितियों से गुजरते हैं। इसलिए भगवान ने कह दिया, काम सर्व काम मोक्ष काम, चाहे जो भी स्थिति हमारी हो, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष की ये न केन प्रकारेण भक्ति में लग जाओ और तीव्र भक्ति में लग जाओ। इसलिए फिर हमारे आचार्य हमें बताते हैं कि कैसे हम हमारे उन सर्व कामनाओं को हम कृष्ण भावना भावित बनाएं, हाउ टू कृष्णाइज अवर डिजायर्स। कि किसी को बिजनेस करने की इच्छा है तो कृष्णाइज द बिजनेस, किसी को नौकरी करने की इच्छा है तो उसको कृष्णाइज करो। तो हमारी हर एक स्थिति को हम भगवान श्री कृष्ण में हम डवटेल करते हैं। हां, वो स्तर अच्छा है, परंतु हम जब ऐसे भक्तों के विषय में श्रवण करते हैं, उद्धव गोपियां, कि इनकी एकमेव एकमात्र इनकी इच्छा कि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता देना, और वो वास्तविक स्तर है कृष्ण भावनामृत का। जैसे कि दशम स्कंद में ये सुंदर प्रसंग है, देवकी और वसुदेव कंस के कारागृह में बंद, और देवकी के इतने सारे जो भी शिशु उन्होंने उत्पन्न किए, कंस नृशंस तरीके से मार डालता था। परंतु एक समय ये आया जब कंस देवकी के कारागृह में गया तो कारागृह को देखते ही कंस को समझ में आ गया कि देवकी के गर्भ में कृष्ण आ गए। उसने देवकी को भी नहीं देखा, कारागृह को देखा केवल। उस जेल के अंदर जो तेज देख रहा था कंस, और उसके पश्चात जो देवकी के चेहरे के ऊपर तेज देख रहा था, तो इन लक्षणों से कंस को समझ में आ गया दैट देवकी इज होल्डिंग कृष्ण। बहुत सुंदर इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सिमिलरली इन द वूम्ब ऑफ इस्कॉन कृष्णा कॉन्शियसनेस वॉज बॉर्न। तो इसका लक्षण क्या कि कंस जैसा राक्षस भी इस संकेत को वो पहचान गया कि भगवान अब देवकी के गर्भ में है। तो एक जो साधक होता है और एक जो प्रचारक होता है, उसे देवकी को कुछ बोलना नहीं पड़ा कंस को कि अब ये मेरा 8वां गर्भ है। देवकी को कुछ बोलना नहीं पड़ा। तो उसी प्रकार से एक जो प्रचारक होता है, यदि वो भगवान श्री कृष्ण की भावना में हर समय रहे तो उसको बोलने की भी आवश्यकता नहीं। जैसे श्रील प्रभुपाद, कितने ऐसे श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं जो श्रील प्रभुपाद के तेज को देखकर कि हां ये व्यक्ति प्रामाणिक है, देखकर। तो देवकी के इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर भगवान श्री कृष्ण को हमने कितना विराजित किया है, इसके लक्षण हमें देखते रहना चाहिए। जैसे कारागृह के अंदर कंस को लक्षण दिखाई दे गए भगवान श्री कृष्ण के अवतीर्ण होने के, तो उसी प्रकार से हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारी चेतना में भगवान का अवतीर्ण होना, इसके लक्षण हमारे अंदर दिखाई देने चाहिए, जैसे देवकी में दिखाई दे रहे थे। लक्षण क्या है? तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मान देन, ये सारे लक्षण हैं। हम आपस में जब भक्तों के संग में रहते हैं तो हम कितना ये तृणादपि सुनिचेन का पालन करते हैं, और जो अंतिम अंतिम पंक्ति क्या है, कीर्तनीय सदा हरि बोधयंत परस्परम, किसका हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण का। ना कि जब हम एकत्रित होते हैं तो पता है उस भक्त के जीवन में क्या चल रहा है आजकल, अरे उसे भक्त कैसे बोल सकते हैं, पता है इसके जीवन में क्या चल रहा है, उसके उसके घर में क्या हुआ, उसे मैंने कहां देखा, उसको ये किया उसने, ये सब। तो अगर ये सब की चर्चा हमारी हो रही, और वो भी कहां, मंदिर में। सोचिए, जो बाहर भौतिकतावादी लोग हैं कम से कम वो मंदिर में तो ये चर्चा नहीं करते ना, वो भी प्रज्वलित भी करते हैं, इसके मोहल्ले में क्या हुआ, उसके घर में क्या चल रहा है, क्या गड़बड़ घोटाला, इसकी चर्चा वो लोग बाहर कर रहे हैं, लेकिन कम से कम वो लोग मंदिर में नहीं करते, बाहर की तरह नुक्कड़ में बैठ के करते हैं। परंतु कई बार हमारी रुचि, हां यदि किसी समस्या को सुलझाने के लिए इसकी चर्चा की जाए उस चेतना में, वो अलग है। परंतु जब हम इसमें रुचि लेते हैं, तुष्यंती च रमंती च, इसके अंदर जब हमारी तुष्टि पुष्टि और हम इसमें रमण करते हैं, इफ दिस इज आवर एपेटाइट, तो वो भौतिकतावादी व्यक्ति से भी दुर्भाग्यशाली स्थिति है फिर। तो उसमें लक्षण क्या दिखाई दे रहे हैं, कि लक्षण ये दिखाई दे रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बदले हमारे गर्भ में पौंडरक है जो कृष्ण की तरह दिखता था, है ना। महाभारत में एक और सुंदर प्रसंग है इसी के संदर्भ में, जब पांडवों का अज्ञातवास चल रहा था, और नियम क्या था कि अज्ञातवास में यदि पांडवों को कोई पहचान लेता है, दुर्योधन पार्टी, यदि वो पांडवों को पहचान लेते हैं तो फिर 12 साल और एक साल और अज्ञातवास। तो दुर्योधन का यह प्रयोजन था कि जीवन भर ये लोग केवल वन में ही विचरण करते रहें और मैं राजमहल में राज करूं, ये उसका प्रयोजन था। तो जैसे ही अज्ञातवास शुरू हुआ, जो 13वां वर्ष पांडवों का शुरू हुआ, दुर्योधन अब उसमें हलचल मच गई। तब तक वो थोड़ा आराम से मौज मस्ती में जी रहा था, परंतु अब अंतिम वर्ष है और इस अंतिम वर्ष में मुझे ये देखभाल कर लेना है कि आगे और 12 वर्ष इन्हें मिले और 13 वर्ष मिले। तो अपने दूतों को यहां वहां भेज रहा है ढूंढने के लिए, पता लगाओ कहां पर है वो, पहचानो इन पांडवों को। परंतु ये 5 पांडव और कुंती, ये इस प्रकार से वो आच्छादित हो गए थे कि कोई पहचान नहीं पा रहा था। तो दुर्योधन उस अवस्था में इतना ज्यादा वो परेशान त्रस्त हो गया कि मैं पहचान नहीं पा रहा इन 5 पांडवों को। तो देखिए दुर्योधन के अंदर भी थोड़ी सी सुबुद्धि आई उस समय, क्योंकि उसका एक नाम सुयोधन था वास्तविक रूप में। भागवत में दुर्योधन को सुयोधन पुकारा गया, उसके कर्मों के वजह से फिर उसे दुर्योधन नाम मिल गया। तो दुर्योधन वो जाता है भीष्म पितामह के पास, हताश, पांडवों को नहीं ढूंढ पा रहा। उस हताश अवस्था में दुर्योधन जाता है भीष्म पितामह के पास और भीष्म पितामह से पूछता है, पितामह मैंने अपने सारे प्रयास लगा दिए, कर लिए, मैं इन पांडवों को ढूंढ नहीं पाया, आप बताइए अपनी बुद्धि से, अपने साक्षात्कार से, मैं कहां इनको ढूंढूं, कहां मिलेंगे ये पांडव। भीष्म पितामह ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन तुम सर्वप्रथम ऐसी जगह को ढूंढो जहां कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं है, जहां हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक उस राज्य का संतुष्ट है, सुखी है, समृद्धि है, जहां पर पृथ्वी प्रचुर मात्रा में धान्य फल फूल ये सब दे रही है, वो जहां कहीं पर भी ये सारे लक्षण तुम देखोगे वहां युधिष्ठिर महाराज और पांडव है। Wherever you see auspiciousness, flourishing earth planet, people who are satisfied, happy, peaceful, self-controlled, Pandavas are there. तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि पांडव जैसे शुद्ध भक्त वो अज्ञातवास में रह ही नहीं सकते। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में वो कथा है कि श्रीवास पंडित, वो चैतन्य महाप्रभु एक बार अकेले में चले गए, क्योंकि अद्वैत आचार्य सभी पार्षदों को अपने कहे कि आज हम केवल चैतन्य महाप्रभु का गुणगान कीर्तन करेंगे। रोज तो कृष्ण का कीर्तन किया कर, आज केवल चैतन्य महाप्रभु का गुणगान कीर्तन। तो चैतन्य महाप्रभु जब सुने कि अचानक मेरा नाम उच्चारण करते हुए मेरा कीर्तन करें, तो चैतन्य महाप्रभु छोड़कर चले गए। तो श्रीवास पंडित वो फिर चैतन्य महाप्रभु के समक्ष जाते हैं और वो अपनी हथेली से सूरज को रोकने का या ढकने का प्रयास कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु से क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि क्या मैं अपनी हथेली से सूरज को ढक पाऊंगा? तो वैसे ही क्या आप जो छन्न अवतार में आए हो, आप अपने गुणों को ढक पाओगे? जैसे सूर्य को कोई अपने हथेली से नहीं ढक पा सकता, तो वैसे ही एक जो कृष्ण भावना भावित भक्त है वो अपने कृष्ण भावनामृत होने के लक्षणों को भी नहीं छुपा सकता। जैसे कि एक भौतिकतावादी सर्वकामी कामुक व्यक्ति है, वो अपने लक्षणों को नहीं छुपा सकता, कहीं ना कहीं उसके वो लक्षण बाहर आ ही जाएंगे। तो देवकी का उदाहरण और महाभारत से भीष्म पितामह ने जो पांडवों का उदाहरण दिया, तो यहां पर उद्धव जी वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे। आंसू, रोमांच, ये सारे लक्षण, भाव विभोर होने के लक्षण उनमें जो दिख रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? कारण है कृष्ण भावना। और कृष्ण भावना उनकी, वो यहां पर बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण से जो आदान प्रदान उनका हुआ प्रतिक्षण, यहां पर वो कहते हैं प्रतिक्षण इस प्रकार कृपा पात्र बना हुआ मैं, भगवान श्री कृष्ण का कृपा पात्र में बना हुआ प्रतिक्षण। अब हम जब साधना भक्ति में हमारी हमारा प्रयास है कि हम भी इस अवस्था को प्राप्त करें, भाव विभोर अवस्था को प्राप्त करें, तो हमें ये देखना है कि प्रतिक्षण क्या हमारा आदान प्रदान हो रहा है। जैसे उद्धव जी का आदान प्रदान प्रतिक्षण भगवान के साथ हो रहा था, कृपा के पात्र वो बन चुके थे। बहुत ही सुंदर एक और प्रसंग है इसके संदर्भ में कि भक्ति में आदान प्रदान, रेसिप्रोकेशन इन डिवोशनल सर्विस, कृष्णा एंड हिज डिवोटीज, इनके बीच में आदान प्रदान। रासलीला में जब भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो जाते हैं, गोपियां विरह में गोपी गीत गाती हैं, और फिर भगवान जब पुनः उनके समक्ष प्रस्तुत होते हैं तो गोपियां वो भगवान श्री कृष्ण से एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछती हैं। सर्वप्रथम वो भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि इस संसार में तीन प्रकार के आदान प्रदान देखे गए हैं, तीन श्रेणियों के। एक है कि आप किसी व्यक्ति के लिए कुछ करो और वो कभी आपके साथ कोई किसी भी प्रकार का आदान प्रदान नहीं करता। That person ignores you, neglects you, never reciprocates. ये एक श्रेणी है। दूसरी श्रेणी है आप आदान प्रदान करो तभी वो आदान प्रदान करता है, नहीं तो नहीं करेगा। जैसे वो वेंडिंग मशीन में आप पैसा डालो तभी वहां से कुछ आपको मिलेगा, कॉफी मशीन होता है ना, इंस्टेंट कॉफी मशीन जो भी। तो ये एक श्रेणी है कि उन्होंने पूछा कि आप जब तक आदान प्रदान नहीं करते वो व्यक्ति आदान प्रदान आपसे नहीं करता। और तीसरी श्रेणी है आप चाहे आदान प्रदान करो या न करो वो व्यक्ति आदान प्रदान अवश्य करेगा। तो गोपियां भगवान श्री कृष्ण से पूछ रही हैं कि हमें इसकी व्याख्या चाहिए आपके श्रीमुख से। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पहली श्रेणी आपने बताई वो है कृतघ्न, अनग्रेटफुल पर्सन, कि जो भी कुछ कर किया जाए उसके संदर्भ में वो कभी आदान प्रदान नहीं करता, वो एक कृतघ्न व्यक्ति है। दूसरी श्रेणी भगवान ने कहा ये एक व्यापारी है कि आप पैसा दो और उसके बदले में वो आदान प्रदान करता है। भगवान ने दिस बिजनेस मेंटालिटी कि जब आप आदान प्रदान करते हो तभी वो आदान प्रदान करता है, ये बिजनेस मेंटालिटी। और भगवान ने कहा कि जो तीसरी श्रेणी के विषय में आपने बताया पूछा कि आप चाहे करो या ना करो वो अगला व्यक्ति आदान प्रदान अवश्य ही करता है, ये है एक माता का हृदय। एक माता का हृदय होता है चाहे मेरा पुत्र मेरा शिशु मेरे साथ आदान प्रदान करें या न करें, मेरा कर्तव्य है कि मैं उसके साथ आदान प्रदान अवश्य करूं। तो गोपियां वो भगवान को ये प्रश्न क्यों पूछ रही थी, अब वो गोपियां भगवान से पूछती हैं तो अब आप कौन सी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वो अभी अभी इनको छोड़ के चले गए थे ना रासलीला में। तो ये विरह में, वियोग में जो आदान प्रदान अपनी तरफ से कर रहे थे, लेकिन भगवान की तरफ से क्या मिला, छोड़ के चले गए। तो पूछ रहे हैं, तो आप कौन सी कैटेगरी में आते? भगवान कहते हैं, मैं तीनों कैटेगरी में नहीं हूं और हूं भी। आई बिलोंग टू दीज थ्री कैटेगरीज ऑल्सो एंड आई एम अबव दीज थ्री कैटेगरीज ऑल्सो। ये कैसे? भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त को कृष्ण भावनामृत में रखना, उसके लिए चाहे, भगवान कहते हैं कि जो पहली श्रेणी है जिसके अंदर भगवान ने कहा वो कृतघ्न व्यक्ति है, उसके साथ भगवान कहते हैं कि एक और व्यक्ति है, चाहे कितना भी आदान प्रदान करो उसको जरूरत नहीं आदान प्रदान करने की, वो है आत्माराम। एक आत्माराम व्यक्ति को कोई आवश्यकता नहीं है आदान प्रदान करने की, और कृतघ्न व्यक्ति वो करता नहीं और आत्माराम को जरूरत नहीं। तो भगवान कहते हैं कि ये जो श्रेणी है, ये श्रेणी में भी मैं आता हूं, क्योंकि जब कोई भक्त मेरे साथ आदान प्रदान करता है तो मैं उस भक्त के साथ जानबूझकर आदान प्रदान नहीं करता कुछ समय के लिए, उसकी भक्ति को तीव्र बनाने के लिए। जैसे नारद मुनि, नारद मुनि को भगवान ने दर्शन दिया कुछ क्षणों के लिए और फिर भगवान अंतर्धान हो गए। नारद मुनि इतना प्रयास कर रहे हैं, भगवान ने दर्शन नहीं दिया। और भगवान गीता में यह भी कहते हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जो सेकंड कैटेगरी थी, कि जो जैसे मेरे साथ व्यवहार करता है मैं वैसे उसके साथ व्यवहार करता हूं। तो भगवान इस श्रेणी में भी आ गए। पहली श्रेणी कौन सी थी? कि वो आदान प्रदान कर रहा है लेकिन भगवान आदान प्रदान जानबूझ के नहीं कर रहे, उस भक्त को उसकी भक्ति में और पक्का तीव्र बनाने के लिए। उद्देश्य दूसरा है। और तीसरी श्रेणी कि चाहे कोई आदान प्रदान करे या न करे, भगवान तो दे ही रहे हैं, हमें अन्न दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, वायु दे रहे हैं, सब कुछ भगवान आदान प्रदान कर ही रहे हैं, तो उस श्रेणी में भी भगवान है। लेकिन भगवान ने कहा कि मैं इन तीनों श्रेणियों के परे हूं। वो कैसे? कि मैं आप गोपियों को छोड़कर गया। क्यों छोड़कर गया? क्योंकि मैं मेरे अंदर आपके प्रति कितना प्रेम है वो परखना चाहता था। मैं आपका प्रेम मेरे अंदर मेरे प्रति कितना है वो नहीं परखना चाहता था। जैसे नारद मुनि के उदाहरण में भगवान अंतर्धान हुए नारद मुनि के प्रेम को और प्रगाढ़ बनाने के लिए, परंतु यहां पर गोपियों के सामने भगवान अंतर्धान हुए, अपने अंदर गोपियों के प्रति क्या प्रेम है? गोपी भावनामृत। कृष्णा वॉज टेस्टिंग हिज ओन लव फॉर द गोपीज एंड टू मेक इट मोर इंटेंसिफाइड ही लेफ्ट देम। ये गोपियों का स्तर है। तो भगवान कहे मैं तीनों श्रेणियों के परे हैं, जो मैंने आदान प्रदान किया है ना, ये इस कैटेगरी में आता ही नहीं है, केवल तुम्हारे संदर्भ में। बहुत हाई लेवल है। इसलिए श्रीमद् भागवत में जब ये प्रश्न पूछा गया शिशुपाल के विषय में, तो नारद मुनि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये शिशुपाल, ये भगवान श्री कृष्ण को डायरेक्टली गाली दे रहा था, इसलिए उसका उद्धार निश्चित था। और वो गोपियों के संदर्भ में कहते हैं कि व्हाट टू स्पीक ऑफ द गोपीज, शिशुपाल जो गाली दे रहा था उसका उद्धार हो। लेकिन उसका उद्धार क्यों हुआ? क्योंकि वो डायरेक्टली भगवान को गाली दे रहा था। और इस भौतिक संसार में जो नास्तिक हैं या जो इंद्रिय भोगी हैं, वो भगवान को इनडायरेक्टली गाली देते हैं, तो सड़ते रहते हैं इस भौतिक संसार में। तो यदि गाली भी देना है, इसलिए भगवान ने कहा अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम, जो भी कुछ है इंद्रिय भोग, जो भी कुछ इच्छाएं, डायरेक्टली मेरे संपर्क में आओ। ये न केन प्रकारेण मुझसे संबंध स्थापित करो। परंतु जो अपना संबंध इनडायरेक्टली भगवान की बहिरंगा शक्ति के साथ स्थापित करता है, वो बहुत दुर्भाग्यशाली है। इसका मतलब ये नहीं कि जो सर्व कामना के साथ भगवान से संबंध प्रस्थापित करता है वो बहुत भाग्यशाली हो गया। नहीं, सबसे भाग्यशाली जो अन्य अभिलाषित शून्यम उस भावना में भगवान से संबंध स्थापित करता है। इसलिए यहां पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ये बहुत सुंदर वाक्य, अंतिम वाक्य है इस तात्पर्य का। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, उद्धव जैसे शुद्ध भक्त केवल भगवान की सेवा में तल्लीन रहना चाहते हैं, उनको अपने वैयक्तिक लाभ की कोई चिंता नहीं होती। तो यहां पर ये कौन सी श्रेणी में आ गए? ओनली कृष्णा। अभी हमारी स्थिति क्या है? हो सकता है हमारी ये स्थिति हो, आई एंड कृष्णा। इसलिए जितना हम प्रयास करेंगे कृष्ण भक्ति की परिभाषा को पूर्ण करने का, कृष्ण भक्ति की परिभाषा है ओनली कृष्णा। एम आई एंजॉइंग द मालपुआ और द मालपुआ एंजॉइंग मी? इसलिए जैसे गोपियां वो भगवान श्री कृष्ण की भावना में, उन्होंने गोपी गीत में क्या कहा, जयति ते धिकम जन्म नाव्रज श्रयत इंदिरा शाश्वदत्र ही। वो कहते हैं कि भगवान जब से आपका जन्म हुआ है तब से इंदिरा, इंदिरा कौन है? लक्ष्मी देवी। कि लक्ष्मी देवी का निवास, उन्होंने उनका परमानेंट रेसिडेंस वृंदावन में हो गया है इंदिरा। और जितने सारे ऐश्वर्य हैं वो सारे ऐश्वर्य यहां पर लक्षित हैं। तो इन लक्षणों से पता लग रहा है कि आपका जन्म हो चुका है, वो कहती है। तो वही देवकी के गर्भ में भगवान का जन्म, देवकी के गर्भ में भगवान का अवतीर्ण होना लक्षणों से दिखाई दे रहा था। जैसे संजय अंतिम श्लोक में क्या कहते हैं भगवद गीता के, यत्र योगेश्वर कृष्ण, उसमें भी वो कहते हैं श्री इंदिरा। जितने सारे शुभ चिन्ह हैं वो उपस्थित रहेंगे जब कृष्ण और कृष्ण के भक्त, ये बहुत महत्वपूर्ण है, धनुर्धर और पार्थ सारथी, पार्थ और पार्थ सारथी दोनों, योगेश्वर कृष्ण और पार्थ धनुर्धर दोनों होने चाहिए। इसलिए कृष्ण भक्ति में हमें केवल इस चेतना में नहीं रहना चाहिए मेरा और मेरे भगवान का संबंध बस। एक उदाहरण दिया गया है, श्रील प्रभुपाद एक अपने प्रवचन में उदाहरण दे रहे थे कि जैसे एक वधु विवाह के पश्चात उसका संबंध किससे स्थापित होता है? पति से। और पति के साथ पति के जो भी संबंधी हैं उनसे संबंध प्रस्थापित हो जाता है, ससुराल वाले जो भी इन लॉज बोलते हैं। तो आजकल प्रभुपाद के, आजकल क्या हो रहा है कि इन लॉज नहीं चाहिए, बस मैं मेरा पति। तो उसमें वो चेतना, उन्होंने क्या कहा कि मैं और मेरा भगवान, मुझे कोई भक्त नहीं चाहिए। लेकिन गोपियां, जैसे गोपी जैसी महान भक्त, वो जिनका डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से है, जब भगवान उनके मन में गोपियों के प्रति क्या भावना है उसको टेस्ट करने के लिए भगवान यदि उनसे अलग हो जा रहे हैं, ऐसी गोपियां वो अपने गीत में कहते हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम भूरिदा। कौन है वो भक्त जो भगवान के नाम कीर्तन का गुणगान कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और हमें उनकी कृपा चाहिए। तो गोपियां यदि इस भावना में हैं, तो जब इस भावना में हम हमारी साधना भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे फिर लक्षण उस शुद्ध कृष्ण भावनामृत भक्ति का दिखाई देगा। जैसे श्रील प्रभुपाद ने पाश्चात्य देश में जो इस्कॉन के मंदिर प्रस्थापित किए, अब फ्रांस ये एक ऐसा देश है जहां पर इतने कुकर्म होते हैं, ऐसे जगह को प्रभुपाद ने नाम दिया न्यू मायापुर। अमेरिका में वेस्ट वर्जीनिया को नाम दिया न्यू वृंदावन, लॉस एंजलिस में न्यू द्वारका। बरसाना महाराज प्रभुपाद के एक प्रमुख सन्यासी शिष्य, उन्होंने कहा श्रील प्रभुपाद ही डिंट इंस्टॉल डीटी, श्रील प्रभुपाद इंस्टॉल धाम, न्यू मायापुर, न्यू वृंदावन, न्यू द्वारका। अब ये जो न्यू द्वारका लॉस एंजलिस का जो मंदिर, ये पहले एक अबैंडन्ड चर्च था, और उस चर्च को भगवान श्रील प्रभुपाद ने द्वारका में परिणित कर दिया। तो जो द्वारका का वर्णन हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत में, तो वो जो खंडर रूइंस जो था उसको द्वारका में परिणित कर दिया। कुछ एक साल पहले मैं यूरोप के एक देश में गया था, स्लोवेनिया, वहां पर उसका कैपिटल है लुब्लियाना। तो वहां पर वो जो मंदिर, वहां पर बहुत सुंदर पंच तत्व का विग्रह है, वो मंदिर बनने से पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मॉर्चरी था। मॉर्चरी जाते जहां पर शवों को रखा जाता है, मृत शरीरों को रखा जाता था, और जो भगवान का ऑल्टर है वो भगवान के ऑल्टर में वहां उस जगह पर मृत शरीरों को रखा जाता था। और जहां पर किचन है वहां पर वो उनके शरीरों को काटा जाता था। अभी वहां डीटी किचन है, और जहां पर शवों को ऊपर रखा जाता था वो वर्ल्ड वॉर के बाद, तो वो उसमें अब भगवान विराजित है। ये कैसे संभव है? एक कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्त की इच्छा के वजह से। जैसे कंस के कारागृह में यदि भगवान अवतरित हो सकते हैं, क्यों? देवकी वसुदेव की भक्ति के कारण। तो हमारा भी हृदय मॉर्चरी के समान हो सकता है, हमारा भी हृदय खंडर भूमि, बंजर भूमि उसके समान है, परंतु किसी एक शुद्ध भक्त का संग यदि हम करें और उस शुद्ध भक्त की इच्छा से, जैसे श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी कि फ्रांस में राधा पैरिस ईश्वर, तो प्रभुपाद की इच्छा से भगवान को एक नया नाम मिला जो किसी भी शास्त्र में वर्णित नहीं है। यदि विष्णु सहस्त्र नाम में आप ढूंढो भगवान का नाम, पैरिस ईश्वर कहां है? लंडन ईश्वर, राधा लंडन ईश्वर। विष्णु सहस्त्र नाम किसी भी भगवान के अलग अलग नामों में नहीं है, लेकिन स्वयं भगवान ने कहा है नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति, जहां मेरी निज सर्वशक्ति है वो मेरे नाम वहां पर है, या मेरे जहां पर भी नाम है उसमें मेरी सर्वशक्ति है। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, प्रभुपाद के बारे में कहा। तो कृष्ण शक्ति उनके अंदर थी, इसलिए राधा पैरिस ईश्वर, न्यू वृंदावन, न्यू मायापुर, न्यू द्वारका। हम जब राधा लंडनेश्वर का मंदिर जो है लंदन सोहो में, वो जो सोहो स्ट्रीट, वो ऐसी स्ट्रीट है वहां लंदन में कि यदि आप किसी को पूछो ना पता सोहो स्ट्रीट, तो आपको ऊपर से नीचे देखेगा, आप जाते हैं वहां पे जा रहे हैं, इतनी बदनाम जगह है वो। तो ऐसी जगह में राधा लंडनेश्वर, तो एक वहां के बुक डिस्ट्रीब्यूटर वो बता रहे थे कि वो सोहो स्ट्रीट के बगल में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है, तो वहां पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो एक यूरोप के दूसरे देश से एक व्यक्ति आया था जिसको प्रिंस चार्ल्स और प्रिंसेस डायना का दर्शन करना था। उस समय ये जो प्रिंस और प्रिंसेस थे, प्रिंस चार्ल्स और प्रिंसेस डायना, इनका दर्शन करना। तो वो देखा कि ये जो भक्त पुस्तक वितरित कर रहा है इसे कुछ पता होगा, तो पूछा कि भाई मैं इनका दर्शन कैसे कर सकता हूं, प्रिंस चार्ल्स और प्रिंसेस डायना। तो ये भक्त ने कहा, अरे हमारे सोहो स्ट्रीट में रहते हैं। तो अब इसने तो सुना हुआ था कि वो बकिंगहम पैलेस में रहते हैं और सोहो स्ट्रीट में। बोला हाँ, बोला नहीं नहीं प्रिंस चार्ल्स और प्रिंसेस डायना। हाँ वही प्रिंस प्रिंस और प्रिंसेस, क्या चार्ल्स और डायना, मतलब प्रिंस और प्रिंसेस सोहो स्ट्रीट में रहते हैं। आई आई मैं आपको दर्शन। तो वो गया, ये व्यक्ति गया और उधर दर्शन खुला हुआ था राधा लंडनेश्वर का। तो क्योंकि प्रभुपाद ने नाम क्या दिया, लंदन के ईश्वर और लंदन की ईश्वरी, प्रिंस एंड प्रिंसेस। तो उन्होंने कहा ये है प्रिंस, ये प्रिंसेस। तो देख रहा है क्या क्या चल रहा है ये। लेकिन ये व्यक्ति, क्योंकि ये बुक डिस्ट्रीब्यूटर ने श्रील प्रभुपाद के वाक्यों को एज इट इज कहा, क्योंकि प्रभुपाद ने वहां प्रस्थापित किया था एक्चुअल प्रिंस और प्रिंसेस को, और उसने एज इट इज इस व्यक्ति को कहा, ये व्यक्ति का हृदय द्रवित हुआ कि सारी दुनिया ये प्रिंस चार्ल्स और प्रिंसेस डायना के पीछे है, और ये व्यक्ति, इसको इतना दृढ़ विश्वास है इन अर्च्य विग्रहों के ऊपर। तो फिर वो पूछने लगा कि कौन है ये बताइए। तो फिर जब पूछा तब सिलसिला चालू हुआ प्रचार का। और आज ये जो प्रिंस चार्ल्स और प्रिंसेस डायना का दर्शन करने आया था, ये आज एक दीक्षित भक्त है लंदन के मंदिर में, और आज वो वहां पर पूजा करता है असली प्रिंस और प्रिंसेस की, राधा लंडनेश्वर की पूजा करता है। तो हमारी आशा यही है, हम सब यहां भटक रहे हैं, किसी प्रिंस को ढूंढ रहे हैं, कोई प्रिंसेस को ढूंढ रहा है। यदि हम किसी शुद्ध भक्त या जो शुद्ध भक्त का प्रतिनिधि है उसके संपर्क में आ जाए, तो वो हमें असली जो प्रिंस है, जो असली ईश्वर है, उनके समक्ष लाएंगे। और फिर हमारी भी ये जो यहां पर उद्धव जी का सौभाग्य, वो अपना सौभाग्य बता रहे हैं, वो अपना सौभाग्य बताते हुए ये नहीं कि मेरे वजह से, कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर ऐसी हुई कि प्रतिक्षण मैं कृपा पात्र बना हुआ उनके द्वारा प्रगाढ़ प्रेम से संबोधित किया जा रहा था। भगवान द्वारा प्रगाढ़ प्रेम से संबोधित उद्धव जी किए जा रहे थे। तो ये गोपियों का उदाहरण, उद्धव जी का उदाहरण, विदुर जी का उदाहरण, मैत्रेय ऋषि का उदाहरण, पांडवों का उदाहरण, ये सब कुछ भरे हुए हैं, प्रचुर मात्रा में भूरी भूरी इनकी व्याख्या की गई है श्रीमद् भागवत में। हमें केवल आपस में करना क्या है, मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च कृष्ण नित्यम। वो बहुत जरूरी है, नहीं तो वो सब तो चलता है हमारा, मत चित्त मत गत प्राण बोधयंत और कुछ परस्परम। तो कृष्ण कीर्तन, कृष्ण कथा, जब इसका परस्पर आदान प्रदान होगा तब जाकर भगवान का आदान प्रदान, जैसे कि उद्धव जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने किया, वो अवश्य ही संभव है। हरे कृष्ण। कृष्ण, किसी का कोई प्रश्न है? टीका क्या क्या फिर से पूछिए।
कभी कभी यानी कि दूसरों भक्त के बारे में कुछ दुर्घटनाएं घटी है किसी के जीवन में तो चर्चा नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं है, मगर ये भी तो कहा है कि वैष्णवी क्रिया मुद्रा विज्ञान ने बुझा है, तो उसको बाहरी रूप से तो समझना बड़ा कठिन है कि वो किस उद्देश्य से हमारे बारे में चर्चा कर रहा है, तो इसको कैसे समझे?
तो आप ही ने उत्तर दे दिया, वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञे न भुजाए, तो क्यों चर्चा करना है फिर?
हाँ
हाँ, तो आप ही बोल रहे हैं ना कि
नहीं, वो तो यानी कि दूसरों के बारे में चर्चा करना वो तो बाहरी रूप से तो वो लक्षण ठीक नहीं है, मगर ये भी तो कि हम बाहरी रूप से कैसे उसको जांच करें कि
ये नहीं, नहीं नहीं, हम भक्तों के संग में हमको जज करना ही नहीं है। हमारे सिद्धांत तो ये बताते हैं कि किसी बाहर के व्यक्ति को भी हमें जज नहीं करना जब तक कि हमें नियुक्त नहीं किया जाए। जो चीफ जस्टिस होता है उसको नियुक्त किया जाता है कि आप जज करो कौन सही है तो कौन गलत है। वो जब रिटायर हो जाता है फिर वो अगर शुरू अपना जारी रखे जज करते रहना कि इसको जेल डालो, इसमें इसको जेल में डालो, तो ठीक नहीं। उसको नियुक्त किया गया है। तो अगर कोई अधिकृत है संस्था में कि हाँ इस भक्त के ये आचरण है, तो वो अधिकृत व्यक्ति जब उसको जज करता है, किस लिए? वो किसी का प्रतिनिधित्व कर रहा है और उस व्यक्ति को सुधार लाने के लिए। लेकिन यदि हमें किसी ने नियुक्त अपॉइंट नहीं किया है और फिर यहां पर हम ये चर्चा कर रहे थे कि अक्सर हम उन चीजों में ज्यादा रुचि लेते हैं, रुचि ले लेके उसमें इतना आस्वादन होता है हमें कि यदि दोनों का प्रोपोर्शन देखें कि हमने कृष्ण के विषय में चर्चा कितनी की है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपको गड़बड़ घोटाला की चर्चा करनी है तो मेरी गड़बड़ घोटाला की चर्चा करो। मैंने ऐसी भी लीलाएं की हैं, श्यामंतक मणि, उसकी चर्चा करो। श्यामंतक मणि की जो कथा है उसमें कहा गया है कि जिसको ये बहुत इच्छा होती है प्रज्वलित करने की, वो यदि ये श्यामंतक मणि की कथा श्रवण करता है या इसकी चर्चा करता है तो वो इच्छा भी उसकी खत्म हो जाती। तो भगवान की लीलाओं में भगवान ने सर्व प्रकार की लीला की है, हम सबको आकर्षित, इसलिए सर्व आकर्षक हैं, सबको आकर्षित करने के लिए। लेकिन आपका प्रश्न अब ऐसे वैष्णव के प्रति है कि आपने पूछा कि बाह्य रूप से उन्हें कैसे समझा जाए या परखा जाए, ये प्रश्न है ना?
हाँ, कभी कभी दिखता है ऐसे कि ऐसा व्यवहार हो रहा है।
हाँ,
तो हमारे भी मन में ऐसे उनके प्रति अपराध भी हो सकता है?
नहीं, क्योंकि देखिए, ये मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि यदि हमारे हमें कहा गया है कि आप उस समस्या को डील करो, जाकर हमें नियुक्त किया गया, तो ठीक है, हम उसकी चर्चा कर कर उसको सुधारने की चेतना में उसके साथ डील करते हैं, नहीं तो हमें कोई अधिकार नहीं है मन में भी जज करने का। दादानाथ महाराज एक बार हमें बता रहे थे कि एक बहुत वरिष्ठ इस्कॉन के श्रील प्रभुपाद के भक्त, उनके विषय में कि उन्होंने कहा कि दैट इज बिटवीन हिम एंड कृष्णा, जो भी कुछ उनके साथ हुआ, दादानाथ महाराज ने कहा इट इज बिटवीन हिम एंड कृष्णा, वी आर नो वन टू जज एंड पास कमेंट्स।
मगर सामने तो दिखता है ना प्रभु, सामने तो वैष्णव रहे थे, वो जब वो सामने आए तो वही दिखता है कि ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए था, तो मेरा अधिकार।
और हमारा सिद्धांत क्या है, क्या हम देखने पर सीइंग इज बिलीविंग, क्या वो हमारा फिलॉसफी है, दैट वी बिलीव व्हाट वी सी। हां दिख रहा होगा कि ठीक है कुछ उसके आचरण गलत दिख रहे होंगे, लेकिन उसके पीछे अंततः भगवान की कुछ योजना होगी। और कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं, नलकुंवर मणिग्रीव, नलकुंवर और मणिग्रीव को जब नारद मुनि ने देखा तो नारद मुनि ने क्या देखा कि अंततः भगवान की कृपा इनको कैसे प्राप्त होगी, इसलिए उनका अनुग्रह था कि उन्हें अर्जुन वृक्ष बनाया नंद भवन में। इसलिए हमारे सामने दिख रहा होगा, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम उससे क्या सीख लेते हैं। हां ये भी हो सकता है कि जो भी आप देख रहे हो वो सही हो, वो अगला व्यक्ति उसके आचरण शास्त्र के अनुसार नहीं है, तो उसमें हमें सीख क्या लेनी है कि एक तो मैं उस प्रकार की गलती न करूं और मैं किस प्रकार से उस व्यक्ति को भी सही मार्ग पर लाने का प्रयास करूं। यदि मैं कुछ नहीं कर सकता, कम से कम प्रार्थना तो करूं, भगवान से प्रार्थना करूं, तो उसके प्रति अपराध करने के बजाय यदि हम प्रार्थना करें। अरे प्रहलाद महाराज जब जो नरक में जा रहे हैं उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो एक जो भक्ति में थोड़ा प्रयास कर रहा है, लड़खड़ा कर गिर गया, क्या हम उसके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। जब प्रहलाद महाराज पापियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो भगवान को गाली दे दे के नरक जा रहे हैं, प्रहलाद महाराज उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो अपराध तो छोड़ दीजिए, हमें तो प्रार्थना करनी चाहिए उल्टा। और यदि हम सक्षम हैं, यदि हम योग्य हैं, यदि हम अधिकृत हैं, तो फिर हम उस स्थिति को सुधारें। किसी भी स्थिति में अपराध जस्टिफाइबल नहीं है, उसका समर्थन कहीं पर भी नहीं दिया गया, कोई भी स्थिति में, मानसिक वाचिक या जो भी शारीरिक रूप से। हरे कृष्ण।
गुरु जी आपने बताया कि जैसे कि हमारे जो कुछ भी कर्म है स्पेशली गृहस्थों के बारे में, तो वो हम डाउटेल करते हैं कृष्ण भक्ति में, तो ये स्टेज
ब्रह्मचारी आश्रम में भी किसी को गाने की बहुत इच्छा है तो फिर वो ना कीर्तन डिपार्टमेंट का हेड बन जाता है, किसी को खाने की बहुत इच्छा है तो किचन इंचार्ज या उसका इंचार्ज बन जाता है, वो किसी को फैशन की बहुत इच्छा है तो पुजारी बन जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि हर पुजारी वैसा है, लेकिन वो डाउटेल करे तो वहां पर भी डाउटेलिंग होता रहता है सब जगह।
फिर भी मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है कि नॉर्मली
मुझे बोलने की बहुत आदत है इसलिए डाउटेल कर रहा हूं, सॉरी।
तो हम जो कुछ भी बाहर 8-10 घंटा काम करते हैं उसे भी डाउटेल करने का प्रयत्न करती कि कृष्ण भावनामृत हो जिससे कि वो हमारा जो फिलॉसफी कि हम जिस परिवार को चला रहे हैं वो परिवार सब भक्त हैं वगैरह, तो ये स्टेज कितनी देर तक चलना चाहिए और ये स्टेज कब खत्म होना चाहिए और इसके आगे का स्टेज क्या होना चाहिए?
वर्णाश्रम, वर्णाश्रम में क्या बताया गया? बताया गया है ना कि एक स्टेज आना चाहिए जब फिर सब छोड़ के संन्यास, उसके पहले वानप्रस्थ। वानप्रस्थ क्या है? अप्रेंटिसशिप संन्यास के लिए। तो वर्णाश्रम में साफ साफ भगवान जो चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, भगवान की सृष्टि है वर्णाश्रम धर्म या हमारे लिए, तो इसमें यही बताया गया है कि हाँ वो तब तक जस्टिफाइबल है जब तक कि आपके आपका उत्तरदायित्व तो है आपके परिवार के प्रति, लेकिन जब ऐसी स्थिति आ गई है कि जब आपका अपने उत्तरदायित्व तो पूरा कर दिया है आपके परिवार के प्रति, फिर वहां पर वर्णाश्रम धर्म के अनुसार वही चीज को फिर करते रहना करते रहना, ये भगवान की योजना में हम सम्मिलित नहीं हो रहे। तो वानप्रस्थ है क्या? वानप्रस्थ है अब बस मैंने गृहस्थी के सारे कार्य कर चुका हूं, मैं 25 से 50 साल तक इतने सारे वर्षों में, अब बस अब जो ये मेरा ये जो प्रसंग है मेरे जीवन का, इसमें अब मुझे फुल टाइम भगवान की भक्ति में लगना है। तो वो धीरे धीरे वो वानप्रस्थ से डायरेक्टली ग्रह से डायरेक्टली संन्यास में नहीं, क्योंकि वो बहुत ही सडन चेंज हो जाएगा, इसलिए बीच में भगवान ने वानप्रस्थ रखा है कि वो फिर अपने पत्नी के साथ फुल टाइम डिवोशनल सर्विस करता है। वानप्रस्थ में वो अपने पत्नी के साथ करता है और फिर वो स्तर आता है जब वो संन्यास लेता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वन में जाके करना है, उसका प्रिंसिपल समझ लेना है कि एक स्टेज के बाद मुझे ये जितने सारे भौतिक स्तर पर जो मेरे डाउटेड कार्य हैं उसको फुल स्टॉप लगा के मुझे डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस करना, वो चाहे मैं घर में रह के करूं या मंदिर में रह के करूं, कहीं पर भी प्रिंसिपल समझना, डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।